તારીખ 26/12/1992 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 634-638 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 239
યોગ્યતા પડી હોગી જો અપને સ્વકાલ મેં બહાર આવે ક્યાં પ્રસંગ બના થા તો આખિર કે ટાઈમ મેં જબ આયે पहले बम्बई आए थे कोई निजी काम से, यहाँ उनके प्रवचन चले बम्बई में मुंबा देवी के अपने मंदिर में, और ये पता चला कि आजकल बम्बई में सुगानी जी के प्रवचन चलते हैं। राजकोट मंडल वाले जो भाई हैं अपने, वो परिचय में आए हुए थे 2 साल से, उन्होंने टेलीफोन से बात किया कि आप राजकोट होकर के संगड़ाइए, संगड़ आना ही है आपको, आपका प्रोग्राम सुना है। तो वैसे वो भावनगर आते थे हवाई जहाज में, बजाय भावनगर आए वो राजकोट आ जाए, फिर राजकोट से हम लोग भी साथ में संगड़ाएंगे। तो ऐसा टेलीफोन से निश्चित हो गया, फिर वो राजकोट होकर के आए थे। तो राजकोट के हवाई अड्डे पर उन्होंने लालचंद भाई को गले लगाए और रिसीव करने को गए थे राजकोट मंडल वाले, लालचंद भाई भी गए थे, उनको गले लगाए बहुत प्रेम से। तो वैसे वो उतना लगाव प्रधान चेष्टा कभी किसी से नहीं करते थे, लेकिन ऐसा हुआ तो कोई योग्यता थी वो बाहर आ गई। सिद्धांत क्या है इसमें कि चारित्र गुण में जो रागादि होते हैं वो चारित्र गुण का स्वभाव नहीं है। रागादि होना, किसी के प्रति राग होना, वो चारित्र गुण का स्वभाव नहीं है। तो फिर राग क्यों होता है? कि ऐसी कोई योग्यता है परिणाम की, और ऐसी योग्यता परिणाम की द्रव्य में योग्यता रूप शक्ति से रूप पड़ी है। त्रिकाली शक्ति नहीं है लेकिन योग्यता शक्ति रूप रहती है, जो अपने स्वकाल में प्रकट हो जाती है। ऐसा एक परिणाम विषयक सिद्धांत है, इस सिद्धांत यहाँ पर दिखने में आता है। तो इसका स्पष्टीकरण दिया है कि द्रव्य में पर्याय परिणमन शक्ति रूप योग्यता होती है। क्या? द्रव्य में पर्याय परिणमन शक्ति रूप योग्यता होती है, जो अपने स्वकाल में प्रकट होती है। उक्त वचन के वचन में ऐसा द्रव्यानुयोग का सिद्धांत स्पष्ट होता है। ये द्रव्यानुयोग का पर्याय विषयक सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत की बात इसमें आती है, इसलिए ये प्रसंग को यहाँ चर्चा विभाग में लिया है। इसी कारण से कि मामूली बात में भी वो द्रव्यानुयोग के सिद्धांत की बात व्यक्त होती रहती थी। बात तो कोई प्रसंग प्रासंगिक है, व्यवहारिक प्रसंग है, फिर भी उसमें सिद्धांत क्या है, परिणमन क्या है, परिणमन में सिद्धांत क्या है, वो बात उसमें प्रकट होती है, व्यक्त होती है। तो ये अपना अंगत परिणमन को दिखाया है कि प्रकृति नहीं होने के बावजूद भी कोई योग्यता है वो अपने समय पर काम कर लेती है, प्रकट हो जाती है द्रव्य में है। सो ऐसा बना था उसमें वो बात स्पष्ट किया है।
कर्मबद्ध का सिद्धांत,
हाँ कर्मबद्ध भी इसमें आ जाता है। जो पर्याय शुद्ध हो अशुद्ध हो, जिस काल में शुद्ध पर्याय में तो क्या कह सकते हैं कि ऐसा परिणाम को करने की शक्ति है, द्रव्य को शुद्ध परिणमना उसका स्वभाव है, लेकिन अशुद्ध परिणाम ना वो उसका स्वभाव नहीं है, ये तो पर्याय की योग्यता होती है, स्वभाव नहीं होता। तो ये योग्यता है वो शक्ति रूप द्रव्य में रहती है और अपने स्वकाल में प्रकट होती है।
ज्ञानी को जो राग उत्पन्न होता है वो भी ज्ञानी को जो राग होता है
सभी जीवों को, अज्ञानी को क्या स्वभाव राग परिणमन करने का स्वभाव है अज्ञानी जीव का? स्वभाव तो ज्ञानी का और अज्ञानी का एक सा है, लेकिन ज्ञानी जानते हैं स्वभाव क्या है विभाव क्या है, अज्ञानी तो विभाव को ही अपना स्वरूप जानता है, वो स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए उसको अज्ञानी कहते हैं।
चर्चा में कहा था कि लक्ष्य कहीं
पड़ा
है और कहेंगे योग्यता
या ऐसा नहीं चले, लक्ष्य तो पर्याय पर होवे, पर्याय का कर्तृत्व होवे या पर प्रत्यय लक्ष्य होवे, पर जैसा परिणाम होने वाला है अपनी योग्यता से होता है ऐसा कहे तो वो बराबर नहीं है। इस योग्यता से अपने को भिन्न अनुभव करे तो ये भिन्न अनुभव में वो कहने का अधिकार आता है कि योग्यता है, परिणाम की ये योग्यता है मेरी नहीं, ये परिणाम की योग्यता है मेरी नहीं है, मैं इसे भिन्न हूं। लेकिन तन्मयता हो जावे अपनी और कहे परिणाम की योग्यता, तो परिणमन कुछ और है और बात कुछ और होगी।
तो पर्याय का धर्म है,
पर्याय का धर्म है,
तो
नहीं वो योग्यता खत्म हो गई प्रकट होने से, ये योग्यता खत्म हो गई। जिस पर्याय की योग्यता थी शक्ति रूप में वो जिस काल में प्रकट हुई, जहां तक प्रकट नहीं हुए वहां तक है, वहां तक शक्ति रूप में है, लेकिन प्रकट होने से बाद ये योग्यता खत्म हो गई। हाँ, लेकिन ऐसा शुद्ध परिणमन करने का स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है शुद्ध परिणमन होवे, ये परिणमन स्वभाव है ऐसा द्रव का, नहीं इसमें योग्यता इसलिए नहीं कहते हैं कि ऐसा तो स्वभाव है त्रिकाली, और ये तो त्रिकाली स्वभाव तो नहीं है, शुद्ध परिणमन का त्रिकाली स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको योग्यता कहते हैं। मेरे जो स्वभाव है वो त्रिकाली गुण है, और विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता कोई त्रिकाली गुण नहीं है, ये धर्म है, गुण और धर्म में अंतर है ऐसा, तो ये धर्म का कह सकते हैं।
तो इससे मुझे का मेरे को ऐसा हो गया इस प्रकार का ज्ञानी कहता है तो भूल करता है,
उदय कहने का उसको अधिकार नहीं है, वो तो उदय को ही अपना रूप जानता है, तो उसको उदय कहने का कोई अधिकार नहीं है।
हो जाएगा तो कहेगा कैसे,
कहने का
काम ही समाप्त हो गया,
कहे तो कहे नहीं कहे तो बात खत्म, कहे तो समझे तो ऐसा, जैसा कहते हैं वैसा समझते हैं, तो वचन से तो ज्ञान की प्रसिद्धि होती है कि क्या समझ है इसके पीछे, नहीं बोले तो भी समझ तो जो है सो है, और समझ को व्यक्त करे तो भाषा से वचन से व्यक्त करते हैं ऐसे। ₹635 प्रश्न, सम्यक दर्शन के पहले आपकी कैसी दशा थी? क्या सम्यक दर्शन हुआ उसके पहले हालत कैसी हुई थी पूर्व पर्याय में, कि फिर सम्यक दर्शन हो गया? उत्तर, निर्विकल्पता के पहले सम्यक दर्शन के काल में निर्विकल्पता होती है, निर्विकल्पता के पहले विकल्प का इतना दुख मालूम हुआ था, ऐसी दशा हुई थी कि या तो देह छूट जाएगी या विकल्प फट जाएगा। मैंने तीसरी बात होने वाली नहीं थी, क्या कहा, विकल्प का दुख बहुत मालूम पड़ता था। आगे भी वो कह चुके हैं कि एक विकल्प है वो आत्मा को, उससे फांसी लगती है। क्या, एक विकल्प से भी आत्मा को फांसी लगती है, स्वभाव को, स्वभाव का गला घोंटता है। तो निर्विकल्प होने के पहले ही ये दशा हो गई थी। क्या, देखिए विकल्प का दुख वो सहन करे, असह्य परिस्थिति हो गई थी, ऐसे विकल्प से छूटना चाहते थे, लेकिन कैसे छूटना और कहाँ जाना छूट करके, ये बात से अनभिज्ञ थे। तो वो बात उनको गुरुदेव से मिली, लेकिन वो स्थिति में थे। विकल्प का दुख है, विकल्प में दुख है अवश्य, लेकिन दुख मालूम नहीं पड़ता है। इसका क्या कारण, कि उसमें प्रेम है। विकल्प तो राग है, राग में प्रेम है, राग में रुचि है, उसमें अच्छापन मान लिया है, तो इसका दुख नहीं लगता और यहां से छूट भी नहीं सकते। विकल्प मिटता नहीं, छुटता नहीं। तो जिस मुमुक्षु को विकल्प का दुख लगे वही विकल्प से छूट सकता है, जिसको विकल्प का दुख नहीं लगे वो तो विकल्प से छूट सकता नहीं। ये तो बहुत स्वाभाविक परिस्थिति है।
भगवान जी का सुख निश्चय के पूर्व भी ऐसी स्थिति थी।
स्वरूप निश्चय के पहले भी ऐसी स्थिति थी, ऐसी पात्रता में ये स्थिति बनती है। क्या होता है कि पात्रता होने में दर्शन मोह का अनुभाग बहुत घटता है, एक बात, क्योंकि आत्मकल्याण की भावना बहुत तीव्र होती है उसमें। तो दर्शन मोह का अनुभाग घटने से जो मुमुक्षु की भूमिका का ज्ञान है, उस ज्ञान में निर्मलता आती है। इस भूमिका के ज्ञान स्वच्छ होता है और ज्ञान में मेलापन मिटता है, तो दुख दुख रूप अनुभव में आता है। क्या,
ज्ञान में मेलापन
मिटता है तो दुख दुख रूप अनुभव में आता है। मेलापन में क्या मेलापन है, कि भ्रांति है, वो मेलापन है ज्ञान में। ज्ञान में राग जैसा कसाई नहीं होता, कसाई चारित्र गुण के पर्याय में रागाधिक होते हैं, उसमें होता है। तो ये मलिनता दूसरे प्रकार की है और ज्ञान की मलिनता दूसरा प्रकार की है। उसमें भ्रांति बना है वो मेलापन है। तो मिथ्यात मंद होने से भ्रांति भी उतनी तगड़ी नहीं रहती, भ्रांति भी मंद हो जाती है। तो जो दुख में सुख का अनुभव है वो भ्रांति है। क्या है, अज्ञान दशा में विकल्प है वो दुख रूप है, और दुख में सुख का अनुभव वो भ्रांति है, क्योंकि वो तो दुख है, सुख तो है ही नहीं। तो उनको दुख दुख रूप लगने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि वहां जो भ्रांति है वो भ्रांति बहुत पतली हो गई। कैसे हो गई, टूटने लायक हो गई, पतली मैंने टूटने लायक। कोई पर्दा होता है तो बहुत पतला होता है तो टूट जाता है, और मोटा होता है तो टूटता नहीं है। तो ये भ्रांति है, एक ज्ञान के आगे पर्दा है, तो वस्तु को सही रूप में देखने नहीं देता, अन्यथा देखता है। तो ये स्थिति पहले हुई थी पात्रता में। तो अपने विकल्प के दुख को सहन करने के लिए असमर्थ हो गए थे। कितने असमर्थ हो गए थे कि या तो उसका देह प्राण छूट जाए, हाँ इतनी वेदना हो गई। विकल्प से छूटने के लिए इतनी वेदना हो गई कि प्राण छूट जाएगा मेरा, या तो विकल्प फट जाएगा, टूट जाएगा बस।
ज्ञान दशा तो धन्य है, लेकिन ये
मोक्ष पात्रता भी धन्य है, कोई सवाल नहीं। ऐसी उत्कृष्ट पात्रता का उत्तर परिणाम ये हुआ, ये पूर्व परिणाम है पात्रता वाला, ऐसी पात्रता वाला पूर्व परिणाम है, और इसके उत्तर परिणाम ये हुआ कि श्री गुरु मिलते ही उनको फटाफट अपना काम होने लगा। उस पात्रता में गुरु की पहचान छिपी नहीं रही, सुनते ही पहचान आ गई, और सुनते ही वाणी सुनते ही अपना स्वरूप का भाव भाषण आ गया। पर पुरुषार्थ इतना उमड़ पड़ा कि कुछ घंटों में ही सम्यक दर्शन हो गया, कुछ दिनों नहीं लगे, कुछ घंटों लगे हैं। तो ये पात्रता को सूचित करता है कि पूर्व पात्रता कैसी थी। ये प्रश्न बहुत हेतुपूर्वक पूछा गया है। उन लोग शाम को घूमने को गए थे, वही कलिया है ना वहां तक तालाब, वहां गए थे, वहां बैठे थे चार पांच आदमी, उस वक्त ये प्रश्न पूछा था कि आपके पहले वाली दशा कैसी थी। तो उन्होंने ये बताया कि या तो देह छूट जाएगा, या तो विकल्प फट जाएगा, तीसरी बात होने वाली नहीं थी। मैं इतना विकल्प से थक गया था, उतना असह्य परिस्थिति मेरी हो गई थी, और उसी परिस्थिति में वो सोनगढ़ आ गए।
कुछ घंटों में एक दिन के अंदर तीनों संगत प्राप्ति होने की कोई ऐतिहासिक
पदमचंद जी के लिए नहीं बात है, तीनों सम्यक वाले श्रीमद जी के 751 नंबर का एक पत्र है जो हमने कलकत्ता में पढ़ा। इस वक्त कलकत्ता में पहले तीन दिन वो पत्र चला, तो क्या है कि आपके हिंदी समाज में तो श्रीमद जी का पत्रों का स्वाध्याय ही कम है, तो ये बात तो सब नहीं लगे सबको, लेकिन है तो सही। तो वहां उन्होंने ये लिया है कि सत्पुरुष की जो पहचान है, वो पहचान में सम्यक दर्शन गर्भित है, इसलिए उनको प्रथम संकेत कहते हैं। ये संकेत का प्रत्यक्ष कारण है, सम्यक दर्शन होने का ये एक प्रत्यक्ष कारण। सबसे पहले सत्पुरुष की पहचान के काल में पैदा होता है, उसका जन्म होता है वहां, तो उसको आज्ञा रुचि रूप संकेत कहते हैं। स्वच्छंद निरोध भक्ति, आप्त पुरुष की स्वच्छंद निरोध भक्ति विश्वसनीयता बैठती है कि सही मोक्ष मार्ग ये दिखाने वाले हैं, और मुझे सही मोक्ष मार्ग यहां से मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। तो उनको विश्वास आता है, उनकी रुचि बढ़ती है, प्रीति बढ़ती है और स्वच्छंद निरोध भक्ति भी होती है। पढ़ो, उनके शब्द में ही पढ़ो। पृष्ठ सख्य संख्या 570, 570 और पत्रांक 751, वर्ष 30। आत्मसिद्धि में कहे हुए संकेत के प्रकार के विशेषार्थ जानने की जिज्ञासा का पत्र मिला है। आत्मसिद्धि में तीन प्रकार के संकेत का संकेत उपदिष्ट है। पहले आप्त पुरुष के वचन की प्रतीति रूप क्या ब्रह्म वाक्य, इतना प्रतीति कितनी आवे, ये ब्रह्म वाक्य है। आज्ञा की अपूर्व रुचि रूप, उनकी आज्ञा वो शिरोधार्य करता है। स्वच्छंद निरोध रूप, स्वच्छंद निरोधता से आप्त पुरुष की भक्ति, उनको बहुत भक्ति आती है। परमात्मा की भक्ति जितनी आती है उतनी भक्ति सत्पुरुष की आती है। यहाँ ऐसी गिनती नहीं होती कि ये चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं और ये तेरहवां गुण स्थान वाले हैं, इतना जो अंतर है वो छूट जाता है। इसको प्रथम संकेत कहा है। तो ये पहचान बिना ये तीन बातें नहीं बनती। जब ज्ञानी पुरुष की पहचान आती है तभी वचन की प्रतीति आती है, तभी उसकी आज्ञा में रुचि आती है और तभी अपना स्वच्छंद मिट करके भक्ति आती है। दूसरा है वो स्वरूप की पहचान है। दोनों में विषय एक है, स्वरूप की पहचान और सत्पुरुष की पहचान में विषय का अंतर नहीं है, व्यक्ति का अंतर है। क्या विषय का अंतर नहीं है। सत्पुरुष है वो पर पुरुष है, सामने दूसरी व्यक्ति है, उसमें स्वभाव दिखने में आया। क्या दिखने में आया पहचान में? स्वभाव दिखने में आया। और अपने स्वरूप की पहचानने में क्या दिखने में आया कि स्वभाव दिखने में आया। तो विषय तो एक ही हुआ, व्यक्ति अलग अलग है, उधर पर है इधर स्व है। तो वो दूसरा संकेत बोला, परमार्थ की मैंने स्वभाव की स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति वेदन लक्षण से ज्ञान मात्र के प्रतीति हुई, उस सम्यक का दूसरा प्रकार है, जिसको स्वरूप निश्चय कहते हैं, स्वरूप की पहचान भी कहते हैं। और तीसरा निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह संकेत का तीसरा प्रकार है। ये परमार्थ निर्विकल्प वास्तविक सम्यक दर्शन है। पहला संकेत दूसरा संकेत का कारण है, क्योंकि किसी को सीधी पहचान नहीं होती अपने स्वभाव की। पहले सत्पुरुष की पहचान होती है, बाद में स्वभाव की पहचान होती है। तो पहला संकेत दूसरा संकेत का कारण है, दूसरा संकेत तीसरा संकेत का कारण है। तीनों संकेत वितराग पुरुष ने मान्य किया है, मैं कहता हूं वो बात नहीं है, सर्वज्ञ वितराग पुरुष ने भी ये मान्य किया है। हमें नहीं मालूम पड़ता कि कौन से शास्त्र में ये बात लिखी है, लेकिन उन्होंने देखा है कहीं भी कि ये तीनों संकेत वितराग पुरुष ने मान्य किया है। तीनों समकित उपासने योग्य है, सत्कार करने योग्य है, मैंने निषेध करने योग्य नहीं है, और बहुमान भक्ति करने योग्य भी है। देखिए ये तीन बात है, तो ये तीन बात हम घटाते हैं सुगानी जी के इतिहास में। तो सुगानी जी को प्रथम समकित कब हुआ, कि जब गुरुदेव को मिले तब प्रवचन सुनते ही प्रतीति आ गई कि ये परम सत्य कह रहे हैं। वचन की प्रतीति होवे तब तो परिणमन होवे, प्रतीति नहीं होवे तो परिणमन कैसे होगा। कहने वाले पर विश्वास ही नहीं होवे तो फिर इस बात का, जो कही हुई बात का परिणमन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, उस वक्त आसार आया था। हाँ, एक ही आवश्यक है, शत आवश्यक नहीं है। तो उस वक्त उनको आसार, ऐसा एक अंदाज आ गया कि मुझे जो विकल्प की परेशानी है, ये परेशानी मिटने का कोई आसार मिलता है, इधर अंदाज मिलता है कि यहाँ से कोई बात हो सकती है। नहीं, उतनी दृढ़ता कैसे हो सकती है। हाँ, तो वो कहेंगे अपने को अच्छा लगा, जचा तो सही, बात तो बहुत सुंदर है, मुझे जाना चाहिए वहाँ। लेकिन पहचान तो रूबरू में जो होती है, भावों की पहचान होती है जो रूबरू में होती है, वो तो परोक्षता में नहीं होती। क्यों कि इससे बढ़िया वचन तो समयसार में भी मिल सकता था। आचार्यों के ग्रंथ उनके घर पे थे, वो कोई वचन की कमी नहीं थी। ठीक या नहीं, आचार्यों के वचन तो उच्च कोटि के होते हैं। फिर भी उनको एक सजीवन मूर्ति का पास जाने का भाव हो गया, उनको वचन को देखते हुए तो प्रेम आ गया। लेकिन पहचान तो मिले बिना, प्रत्यक्ष मिले बिना पहचान तो हुई ही नहीं, क्योंकि आचार्य महाराज का वचन भी परोक्ष था, तो आचार्य महाराज की पहचान नहीं हुई। ये तो सर्वज्ञ परंपरा अनुसार चलता है आगम तो सब, लेकिन पहचान तो रूबरू में होती है। ये प्रत्यक्ष वे और स्वरूप का भाव भाषण भी निश्चय भी सुनने से आया, स्वरूप सुनाया तब। तो ये एक बात, कोई रिकॉर्ड के हिसाब से जबरदस्त बात है कि एक ही दिन में ये तीनों संकेत वाली बात हुए किसी को, ये बात थोड़ी असामान्य है। सामान्य नहीं है लेकिन असामान्य है, असाधारण है, वो बात तो जरूर है। निश्चय ग्रंथ आत्मा है, निश्चय गुरु भी आत्मा है, और निश्चय देव भी आत्मा ही है। मूल बात इधर से है, अपने अंतर में से है, बाद में बाहर के निमित्तों पर उपचार किया जाता है। और ज्ञानियों को ये अनुभव हमेशा होता रहता है कि ग्रंथ में तो बाद में से समझना को मिले, इसके पहले आत्मा में से वो बात समझ में आ जाती है कहीं, फिर ग्रंथ में जो वचन है पूर्व ज्ञानियों का, पूर्व आचार्यों का, वो अपने ज्ञान में निमित्त भूत होते हैं कि जो बात अंतर में से समझ में आई अपनी आत्मा से, वो आगम से अभी मेल खाती है। तो तो निश्चय ग्रंथ तो आत्मा है, वहां जब मिलान होता है आगम से तब उसको व्यवहार से ग्रंथ कहते हैं, व्यवहार से उसको आगम कहते हैं, लेकिन जीवंत आगम तो अपनी आत्मा ही है। और जो भी आगम में जो भाव लिखे गए हैं वो भी किसी ज्ञाने आत्मा के भाव को ही प्रकट करने का एक माध्यम है, कथन है, वचन है। वो तो कहां से निकले आगम? के आत्मा में से निकले, इसलिए निश्चय ग्रंथ तो अपनी आत्मा है। और निश्चय गुरु भी आत्मा है, गुरु उपदेश देते हैं, सन्मार्ग पर लगाते हैं, तो आत्मा में भी उन आत्मा या विभाव का निषेध आता है कि नहीं आता है? आत्मा में से निषेध आता है, जैसे शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति है, क्या है इसको मेडिकल साइंस में क्या अशुद्धि का निषेध करता है, तो इसलिए निश्चय गुरु आत्मा ही है। और जैसे गुरु को प्रश्न पूछते हैं और गुरु उत्तर देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, वैसे किसी भी बात में इस बात का जब प्रयोग किया जाता है आत्मा में, तो ये प्रयोग के काल में उत्तर मिल जाता है, आत्मा ही उनको उत्तर देती है। जैसे अपने आप कोई भूले सुलझ जाती है, सलट जाती है, कैसे सुलटी? पात्रतावश ऐसा होता है, खास प्रकार की उच्च कोटि की पात्रता है तो भूल निकल जाती है, भूल टिकती नहीं है, रहती नहीं है, ऐसा बनता है साधकों को। इसलिए निश्चय गुरु तो अपनी आत्मा है। और निश्चय देव भी आत्मा है, वो तो सर्वज्ञ शक्ति वाला देव है, भीतर में दिव्य शक्तियों का भंडार भरा है, निश्चय देव तो आत्मा ही है। जैसे देव वंदन के योग्य है, देव पूजन के योग्य है, ऐसे अपनी आत्मा भी वंदन के योग्य है।
आत्मा के
ग्रंथ
को पढ़ना
अवलोकन से पढ़ना, हाँ, ये अनुभव पद्धति है। अनुभव पद्धति से नहीं पढ़ेंगे तो अनुभव की विधि का पता नहीं चलेगा, पढ़ते जाएंगे कंठाग्र हो जाएगा, मुखाग्र हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाद में बाहर के निमित्तों पर उपचार किया जाता है, देव गुरु शास्त्र का उपचार तो मेल खाता है, इसलिए उस पर उपचार किया जाता है।
अनुभव की विधि से पढ़ना,
ये अवलोकन करना, ये अनुभव की विधि है। जैसे बहुत मामूली दृष्टांत ले ले, बहुत मामूली, कि हमने ये सुनते हैं, सैकड़ों दफे सुना है कि राग दुख रूप है, लेकिन इसका अनुभव कुछ राग में दुख, कुछ राग में सुख। तो हमारी जो पद्धति है उसमें विचार से हम मान्य करते हैं, अनुभव से उसको अनुभव में लेकर के मान्य करना, समझना, ये दूसरी बात हो गई। तो ये नास्तिक का विषय है, राग क्या है नास्तिक का विषय है, और स्थूल परिणाम है, फिर भी हमारी गलती रहती है स्थूल विषय में, तो सूक्ष्म विषय में कैसे गलती नहीं होगी? जब स्थूल विषय में हमारी गलती चल रही है तो सूक्ष्म विषय का पता ही कहां से चलेगा? तो जहां तक राग में दुख का अनुभव नहीं हुए, वहां तक हमारा राग को हम देखें, अवलोकन करें, इस अनुभव को तलाश करें, उसकी जांच करें, अच्छी तरह हमारे अनुभव की तलाश जांच करें, और जहां तक दुख में दुख नहीं लगे, वहां तक हमारी राग दुख रूप है ये समझ सही नहीं है। मैंने अनुभव पद्धति से ये समझ नहीं हुई है।
अनुभव पद्धति में राग दुख भी दिखाई देना चाहिए,
ऐसा अनुभव में आना चाहिए क्या? राग का अनुभव दुख रूप है ये अनुभव में आना चाहिए, ये अनुभव पद्धति है समझ के। और राग दुख रूप है वो न्याय से, तर्क से, युक्ति से, अनुमान से, आगम से समझते हैं, लेकिन ये सब प्रमाण अनुभव प्रमाण के आगे कमजोर है। अनुभव प्रमाण ही बलवान प्रमाण है ऐसा आगम कहता है और हमारे अनुभव भी कहता है। इसलिए सब बात को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब बात हमें अनुभव में लेकर के समझना चाहिए। ये बात खरी है मान लिया ऐसा नहीं, अनुभव एक कसौटी है, जब अनुभव की कसौटी पर खरी उतरे तब बात खरी, ऐसा हमारा समझने की कार्य पद्धति में एक सिद्धांत हो जाना चाहिए कि हमें उस तरह समझना है कि हर बात को हमें अनुभव की कसौटी पर ले जाना है, और वहां खरी उतरी तो खरी, नहीं खरी उतरी तो हमारे लिए वो खरी होते हुए भी खरी नहीं रही। इसलिए तो
दिखाई दिया
अब तो बात है कि ज्ञान में क्या मालूम पड़ता है, क्या विकल्प है वो स्वयं राग है, विकल्प है वो स्वयं राग है, और वो दुख रूप है, इसका रूप क्या है? दुख। तो जब विकल्प स्वयं आकुलता से अभेद है, वो उनका रूप है, तो ज्ञान में क्या लगता है, क्या अनुभव आता है? ऐसे इस बात को समझे, हम युक्ति से मान लेंगे कैसे। देखिए हमें कोई मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन खाते खाते हम उसका निषेध कर देते हैं कि अभी नहीं खाना है, क्यों? कभी खाएंगे तो वॉमिट हो जाएगी, कभी खाएंगे तो आकुलता हो जाएगी, अभी खाएंगे तो और तकलीफ हो जाए, बढ़ जाएगी। तो ये राग सुखरूप था, कुछ सेकंड पहले सुखरूप था, कुछ मिनटों पहले सुखरूप था, वही राग दुखरूप लगने लगा। तो युक्ति से तो लगता है, लेकिन ये युक्ति का यहाँ आधार नहीं लेना है, आगम का आधार नहीं लेना है, न्याय का आधार नहीं लेना है, अनुमान का आधार नहीं लेना है, हमें वो अनुभव करना है कि वास्तव में क्या है। जब हमारे अनुभव में दुख रूप हुआ लगा तो बात सही, नहीं लगा तो हमारे अनुभव में कुछ गलती है, क्योंकि बात सही है, दुख रूपी है वो बात सही है, लेकिन हमारे अनुभव में ये नहीं होता है तो हमारे लिए वो सही नहीं रही, ऐसी बात है। तो हर बात को अनुभव की कसौटी पर ले जाएं और खरी उतरे, उस तरह उनको समझें, ये पद्धति है, वास्तव में ये पद्धति है समझने की। जैसे हम कहेंगे कि रोटी बनाना आता है तो कब बनाना आता है, कि रोटी बनाने का प्रयास होवे तब कैसे रोटी बने वो समझ में आती है। ऐसे तो घर में जो 10 साल की बच्ची है वो हमेशा देखती है कि उसकी मम्मी कैसे रोटी बनाती है, काटा में पानी डालती है, फिर ऐसा उसका पिंड बनाती है, फिर ऐसा करके रोटी बना लेती है, सब देखती है। तो क्या उसको ज्ञान हो गया रोटी बनाने का कि नहीं हुआ? जो खुद वो रोटी बनाएगी तब कैसे रोटी बनती है उसका ज्ञान सही समझ अनुभव पद्धति से आएगा। ऐसे इधर भी ऐसा ही है कि शास्त्र पढ़ने से जो समझ होती है आत्मा की वो ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मभाव में जब प्रवेश होता है, आत्मभाव प्रकट होता है, तो आत्मज्ञान कैसे होता है ये बात निकलती है। तो प्रयास के काल में ही, पुरुषार्थ और प्रयत्न के काल में ही सही समझ आती है, इसके पहले सही समझ नहीं आती। तो ये प्रयत्न में आगे बढ़ना है, उसको अपन प्रैक्टिस कहते हैं, उसी काल में समझ में आता है, इसके पहले खरी समझ नहीं होती।
विवाह को देखना पहले
है,
विवाह परिणाम को देखना,
हाँ,
में विवाह परिणाम को देखना।
वो तो क्या है कि पहले मोटी चीज ही देखने में आती है, आप पहले नहीं देखना चाहो तो भी वही होगा। क्या कि जब कोई चीज को आप देखते हैं तो पहले मोटी चीज दिखेगी, दूर से पहले मंदिर का शिखर दिखेगा क्या, मूर्ति दिखेगी क्या? हाँ, मंदिर का शिखर देखेगा, जब पता चलेगा कि वहां मंदिर है, कि नजदीक में जाएंगे तब तो, भीतर में जाएंगे तो मूर्ति दिखेगी। ऐसे पहले सब मोटी मोटी चीज दिखने में आती है, देखने की प्रैक्टिस बढ़ती है तब उसमें सूक्ष्म चीज है उसकी जो भी खूबियां हैं वो सब देखने में आती है। परख में क्या होता है, चांदी का सोने का परख करते हैं ना, आप तो सराफे में बैठे सब पता होगा। नजर पैनी होती है, सूक्ष्म होती है, तब तो परख आती है, और बिना प्रैक्टिस हो जाता है क्या वो? ऐसी बात है कि आत्मा एक सूक्ष्म पदार्थ है, रूपी सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव वाला पदार्थ है। जब इसका अवलोकन की प्रैक्टिस आती है और ये प्रैक्टिस बढ़ती है तो आगे जाकर के उसकी पहचान और परख होती है। बिना परिचय तो किसी की पहचान हो सकती नहीं है। तो स्वभाव को पहचानने के लिए स्वभाव के परिचयी होना आवश्यक है। क्या? स्वभाव को पहचानने के लिए स्वभाव के परिचयी होना आवश्यक है। बिना परिचय किसी के पहचान होने का कोई तरीका है ही नहीं। ये 636 हुआ, 637 मैं तो अभी ही सिद्ध हूं, क्या कहते हैं? मैं तो अभी ही सिद्ध हूं, 14वां गुण स्थान होगा जो आखिर का है, संसार अवस्था का आखिर का गुण स्थान 14वां है, वो भी होगा, और बाद में सिद्धालय में जाना होगा, क्षेत्रांतर वगैरह होगा, से मनुष्य क्षेत्र में से सिद्ध शिला में जाना होगा, लेकिन यह सब कार्य पर्याय में होगा, मेरे में नहीं। क्या कहते हैं? 14वां स्थान भी पर्याय में और सिद्ध दशा भी पर्याय में और क्षेत्रांतर भी पर्याय में, यह सब कार्य पर्याय में होगा। पर्याय का कार्य पर्याय में होता है, मेरे में नहीं। मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूं, मेरे सिद्ध स्वरूप में मैं त्रिकाल स्थित हूं, तो त्रिकाल में वर्तमान आ जाता है, वर्तमान में भी मैं स्थित मेरे सिताले में ही स्थित हूँ, कभी कहीं आया भी नहीं और कहीं गया भी नहीं, मैं तो अपने शुद्ध स्वरूप में अनादि अनंत विराजमान हूँ, कहीं आने जाने का मेरे में होता ही नहीं मेरे स्वरूप में, और पर्याय में होगा तो होगा, अपने काल में होगा, पर्याय का कार्य पर्याय में होगा, मुझे क्या लेना देना है।
समय दृष्टि का विचार
था
हमारा
स्वरूप तो सबों का एक सा है, सम्यक दृष्टि का और मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कोई अलग अलग है क्या? मिथ्या दृष्टि स्वरूप का स्वीकार नहीं करता इसलिए मिथ्या दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि ने स्वीकार कर लिया इसलिए सम्यक दृष्टि है। तो आप अस्वीकार को छोड़ दो, इस बात का अस्वीकार है उसको छोड़ दो। आप ये कहेंगे कि नहीं हम तो स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, ठीक, आपका ये प्रश्न हो सकता है कि हम तो हमारे सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्या करें? नहीं होता है तो रोना भी आ जाता है, फिर भी नहीं होता है तो क्या करें? अब तो हमारी नियत ठीक है ना, हाँ, जब हमें हमारा सिद्ध स्वरूप में हमारा स्वीकार नहीं होता है तो हमको दुख होता है, अगर नियत ठीक नहीं होती तो दुख नहीं होता। क्या दुख नहीं होता है इसका मतलब कि नियत ठीक नहीं है, और दुख होता है तो नियत तो सही है फिर भी नहीं होता है, अब क्या करें? हाँ, ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि आपने जो और कुछ स्वीकार कर लिया है उसको क्यों नहीं छोड़ते? जब आपकी नियत सही है कि मुझे मेरा सिद्ध पद का स्वीकार करना है, तो फिर आपने जो कुछ स्वीकृत कर लिया है कि मैं फलाना फलाना हूं, उसको क्यों नहीं छोड़ते? बस देर तो उतनी है कि वर्तमान जो कर्म जनित अवस्था है मनुष्यत्व की, क्षोभम की, रागादि की, जो भी जितनी भी है, मैं ऐसा हूं ये पकड़ लिया है, ये पकड़ नहीं छूटेगी तो ये पकड़ नहीं आएगी, दो पकड़ हो ही नहीं सकती विरुद्ध होने से, तो जो पकड़ हुई है उसको तो छोड़ना पड़ेगा, छूटते ही ये पकड़ आ जाएगी कि मैं सिद्ध सिद्ध स्वरूप हूं, तो ध्यान वहां देना है क्या?
पकड़
वो छूटती नहीं है, उसको छोड़ते नहीं हम, इसलिए हमें हमारी नियत ठीक है कि हमें हमारा स्वरूप का स्वीकार करना ही है फिर भी नहीं होता है, तो ये हम यहां बोले। इसलिए नास्तिक को देखनी पड़ती है, नास्तिक को देखे ही नहीं तो गलती समझ में आएगी नहीं, पकड़ तो वहां पड़ी है नास्तिक में, हम कहेंगे कि नास्तिक को नहीं देखना है, हमको तो अस्ति को देखना है, कहां से देखोगे? ऐसे अस्ति पकड़ में आती नहीं है, तो ये अवलोकन से समझ में आता है कि हम कहां रुकते हैं, कैसे रुकते हैं, क्या कल्पना बनती है, वास्तविकता से कैसे दूर जाते हैं, कितना रस आता है, पकड़ कितनी मजबूत है या ढीली है या क्या कैसी है, जो भी है, ये सब बातें अवलोकन से समझ में आती है। समझना है तो अवलोकन से समझना है या विचार से समझना है, कैसे समझना है? हाँ, जिसे कहेंगे कि हम मनुष्य हैं, हम फलाने परिवार वाले हैं, फलाने गांव वाले हैं, व्यापारी है, पुरुष है, ऐसा ऐसा राग आता है, ऐसे राग वाले हैं, ऐसा देह है तो ऐसा देह वाले हैं, सैकड़ों मान्यता उल्टी स्वरूप को छोड़ करके बना रखी है। तो हम उसका अवलोकन करेंगे, ये क्या, ये उल्टी बात है पकड़ में। अपना जहाँ परिणाम जिस काल में होता है वहां उसको ढीला तो करे अवलोकन से, उसमें ढीलापन नहीं होगा तो छूटेगा कहाँ से। ये ग्रंथि है, क्या है, मोह ग्रंथि जिसको कहते हैं, गांठ निविड़ हो गई है। क्या, मोह की गांठ अनादि से निविड़ हो गई है। तो ये गांठ है पहले ढीली होती है बाद में छूटती है, ढीली नहीं हुए और छूट जावे ये तो कैसा बनेगा, ये तो बनता ही नहीं कभी। तो पहले उसको ढीली तो करो, ये अवलोकन से ढीली होगी फिर छूटेगी। अवलोकन से भी ढीली होगी और पश्चाताप से भी ढीली होती है। जब हमारा काम नहीं होता है तो हमें पश्चाताप होता है, दुख लगता है, इससे भी वो ग्रंथि ढीली पड़ती है। बहुत से हैं उसके लिए तो सारे प्रयोजन सिद्धि है, प्रयोजन सिद्धि में तो बहुत से भेद प्रभेद इसके लिए लिखा है कि कहाँ गांठ मजबूत होती है, कहाँ ढीली होती है, कैसे ढीली होती है, कैसे मजबूत हो जाती है। तो ये हुआ 637। प्रश्न लिया है कि पुरुषार्थ कैसे करना, सीधा प्रश्न है कि पुरुषार्थ कैसे करना। उत्तर, मैं वर्तमान में ही अनंत वीर्य का पिंड हूं, ऐसा भाव यही पुरुषार्थ है। मैंने पुरुषार्थ की खानी को संभाले, यही पुरुषार्थ है। ये एक गुण की बात लिया पुरुषार्थ के विषय में, लेकिन अनंत गुण की संपत्ति है आत्मा में, अनंत गुण का ऐश्वर्य है। अपने ऐश्वर्य को संभालने से पुरुषार्थ तीव्र होता है। खास करके इस विषय की सूक्ष्मता में जाएं तो जैसा स्वरूप है अनंत गुणात्मक, अनंत ऐश्वर्यात्मक, जैसा भी स्वरूप है वैसा जहां तक प्रत्यक्ष नहीं होता वहां तक बल नहीं आता और वहां तक रस नहीं आता। आत्मरस और आत्मबल दोनों एक साथ उत्पन्न होता है क्या, और प्रत्यक्ष बिना रस आएगा नहीं। वस्तु स्वरूप से अनंत प्रत्यक्ष है क्या, वस्तु स्वरूप से अनंत प्रत्यक्ष है। ऐसे अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप को परोक्षता में रख करके हम इसका कितना भी विचार करें, कितनी भी महिमा करें विचार में, आत्मरस और आत्मबल उत्पन्न होने वाला नहीं है। और प्रत्यक्षता में रस उत्पन्न करना पड़ता नहीं है, रस उत्पन्न हो जाता है, ऐसी बात है। इसलिए वास्तव में पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, पुरुषार्थ हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ को सहज पुरुषार्थ कहते हैं, एक कृत्रिम पुरुषार्थ कहते हैं, ऐसी बात है। प्रत्यक्ष में बहुत रस आता है कि क्रिकेट देखते हैं ना लोग, तो टीवी पर भी देखने को मिलते हैं और उधर भी जाते हैं देखने के लिए प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष देखने वाले को तो एक ही एंगल पर से देखना मिलता है, जहां जो बैठा है, स्टेडियम जो होता है उसमें कहीं भी अपनी सीट है उसी जगह से एक बाजू से देखने के मिलेगा, और टीवी पर आठ बाजू से आठ कैमरे लगाते हैं और उसमें स्लो पोजीशन भी देते हैं, वहां तो देखने में तो सेकंड में देख लिया, नहीं देखा तो गया। हाँ, फिर भी प्रत्यक्ष में जो रस आएगा वो टीवी में आने वाला नहीं है। अगर आता तो वहां खर्च करके टाइम खराब करके क्यों देखने को जाते हैं। हाँ, पर विदेश में जाते लोग देखने के लिए, हाँ, खर्चा करके, और वहां भी टिकट खरीदनी पड़ती है, और इसी तो घर में तो टीवी है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन रस ज्यादा आता है प्रत्यक्षता में। एक दृष्टांत ऐसा है कि प्रत्यक्षता में कितना रस पड़ता है, उल्टा सुलटा सब। जैसे आप एक्सीडेंट देख लो किसी का, या किसी का कोई खून करता है देख लो, आपको जो उसका अणगमा होगा, क्या देखने से जो घृणा होगी, तो उसका फोटो देखने से नहीं होगी। अगर अखबार में इसका चार फोटो आ गया चार एंगल से तो उतनी असर नहीं आएगी आपको, लेकिन उसका जो निषेध का जो रस है वो रस प्रत्यक्ष देखने में बहुत आ जाएगा। इतना रस कुछ सेकंडों में इतना रस पैदा हो जाएगा कि निकालना मुश्किल हो जाएगा दिमाग में से। क्या किसी को मरते हुए आप देखते हो तो कुछ सेकंडों में वो मरता है तो आपका मस्तिष्क में से बात निकलने वाली है, रात को सपने में आ जाएगा। हाँ, प्रत्यक्ष कामाएं बहुत रस पड़ता है, इतना रस उत्पन्न हो जाता है सेकंडों में कि जिसकी गिनती करना मुश्किल है, इतना तीव्र रस हो जाता है। अब देखिए कि आत्मा अगर अनंत प्रत्यक्ष है, अनंत गुणात्मक अनंत प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभवान से, प्रत्यक्ष अंश से अगर इसकी अनंत प्रत्यक्षता देखी गई, कितना रस हो गए उसमें, और कितना रस हो गए तो कितना पुरुषार्थ हो गए उसमें। तो पुरुषार्थ का मूल देखना है तो यहां पर पड़ा है, प्रत्यक्षता में पड़ा है, ऐसी बात है। जहां तक ये प्रत्यक्ष चीज प्रत्यक्ष तौर से दिखने में नहीं आएगी प्रत्यक्ष अंश से, वहां तक कल्पना करके विकल्प करके कितनी भी महिमा की जाए, इस सही रूप में वो आत्मा की महिमा नहीं होगी, ऐसी बात है। फिर तो दूसरा प्रश्न उठाया है, यहां तक रखे फिर और लेंगे बात।
जय हो, जय हो, जय हो।